राम। श्रीमद् भगवद गीता पाठ पहला अध्याय श्लोक संख्या 38 से 47 पर्यंत। पहला अध्याय श्लोक संख्या 38 से अध्याय समाप्ति पर्यंत।
Oh.
श्रीमद् भगवद गीता पाठ पहला अध्याय श्लोक संख्या 38 से 47 पर्यंत। पहला अध्याय श्लोक संख्या 38 से अध्याय समाप्ति पर्यंत।
वसुदेव सुतं देवं कंसचानुरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं यद्याप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलाक्षयकृतं दोषं मेत्रद्रोहे च पातकं कथं नाज्ञेयमस्मभे पापादस्मान्निवर्तितं कुलाक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलाक्षये प्रणश्यन्ते कुलधर्मः सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण मधर्मोऽभिभवच्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदोष्यन्ति कुलस्त्रिया श्रीषु दोष्टास्तु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्कर सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानाङ्कुलस्य च पतान्ते पितरो येषां लोप्तपिण्डोदकक्रिया दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माष्टशाश्वता ओत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशोषुम अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं व्यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमोद्यता यदि मामप्रतीकार मशस्त्रं शस्त्रबाणया धातुराष्ट्रानरेहण्यं स्तन्वेक्षे मातरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमोक्त्वार्जुन साङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य साशरंतापं शोकसंवेग्नमानस शोकसंवेग्नमानस श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु वेद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्थसंवादे निर्विशादयोगराम प्रथमोऽध्याय वसुदेवसुतं देवं कंसचानोदमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सुखम लोकम एवं प्राप्त भजस्व अनित्यम असुखम एवं अनित्य है इस बात से देरी नहीं करना चाहिए सही का न जाने कब सही चल जाए असुखम सुख है नहीं सुख के बहम से बहुत संप्रदा दे देता है ये सुख ले लें वो ले लें है नहीं इसमें है तो आज दिन क्या मिला कितना सुख मिला कितना सुख से क्या क्या पुष्टि होगी क्या संग्रह हुआ क्या हासिल हुआ है नहीं एवं प्राप्त ये शरीर है इसमें बहुत लाभ होगा सुदुर्लभ एकदम बहु संभवान थे एवं प्राप्त इस शरीर को प्राप्त करके लाभ ले लो इस शरीर की महिमा देवताओं से बढ़ कर गए ऐसी सही गरीब की महिमा नहीं है तो वो महिमा इस शरीर को लेकर के नहीं है शरीर में तो पांच है पसी खेत पावक अगर समीरा पंच रसिया अधम शरीरा अधम शरीर है तो इसमें जो विवेक शक्ति है उसकी ये महिमा है वो विवेक शक्ति है उसके काम है ठीक है उसके ये बहुत मृदु शक्ति है ये हरेक में नहीं है देवताओं में नहीं है पशु पक्षियों में नहीं है नाग जीवों में नहीं है भूत प्रेत पिशाचों में नहीं है राक्षसों में असुरों में नहीं है वृक्षों में धूप में लताओं में घास में जलस्रों में आकाश में डोरों में ऐसी विलक्षण शक्ति इसमें एक विवेक शक्ति है इसको प्राप्त होकर के परमात्मा को प्राप्त करना है मेरी एक बात मन में आती दो तीन दिन से कि उन बात को अपने अनुभव करें जैसे दो दिन से मैंने कहा भाई कुछ भी न करे चुप हो जाए शांत ऐसे करके देखे, दिन में कई बार करके देखे तो ऐसे आपने किया होगा उसमें अड़चन आवे वो पूछे। और ये अगर शुरू कर दे आप तो बहुत विशेष लाभ की बात है। सुनने की बातें बहुत है, सीखने की बहुत, सिखाने की सुनाने की बहुत बातें है, परंतु अपना जीवन है वो कैसे, जीवन खुद में अपने परिवर्तन आना चाहिए ना। जैसे अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, ये संसार है तो अनुकूलता का भी असर पड़ जाता है, प्रतिकूलता का भी असर पड़ जाता है, हमारे पर असर होता है। तो असर हो जाने से हम अपनी स्थिति में ठीक नहीं रह सकते। यंग है ना व्यथियंत ये पुरुषम पुरुषम, जिसको ये मात्रा स्पर्श व्यथा नहीं पहुंचा सकती। राजी हो गए तो आप व्यथित हो गए, नाराज हो गए तो व्यथित हो गए, अपनी स्थिति पर ठीक नहीं रहे वो व्यथा हो गई। तो वो व्यथा जब तक होती रहे तब तक मनुष्य जीवन की सफलता नहीं है। तो ये शक्ति आती है, ये जो मैंने कहा भी थोड़ा थोड़ी देर स्थिर हो देखें, कुछ भी चिंता न करें। छठा अध्याय के 25वें श्लोक में आत्म संस्तम मना कृत्वा न किंचित भी चिंतित, एक परमात्मा परिपूर्ण है। आस्तिक लोग सब मानते हैं वो सब देश में है, सब काल में है, संपूर्ण वस्तुओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है, सब जगह वो है, एक परमात्मा परिपूर्ण। तो परमात्मा है ऐसे सब जगह, ऊपर नीचे बाहर भीतर नीचे सब परमात्मा परिपूर्ण है, ऐसे मान करके और चुप हो जाए, कुछ भी चिंतन न करे। कुछ भी चिंतन न करे ऐसी अवस्था में ये आग्रह नहीं कि वो चिंतन नहीं करना है, ये भी आग्रह नहीं चाहिए। चिंतन करना है ये भी आग्रह नहीं चाहिए, चिंतन नहीं करना ये भी आग्रह नहीं रखना है। स्वतः स्वाभाविक एक स्थिर करना, स्थिर होना है एक स्वतः स्वाभाविक। तो स्वभाव अवस्था है उसकी महिमा है, स्थिर होना भी क्रिया है और करना भी क्रिया है। तत्व की बात बताई कि नहीं मतस्य कृते नासा न करते नहीं है कष्ट, न करने से कोई प्रयोजन नहीं है तो न करने से भी कोई प्रयोजन नहीं है। तो न करने का भी आग्रह नहीं, करने का भी आग्रह नहीं, स्वतः शांति। जैसे नींद आती है ना, तो नींद हम लेते हैं तो नींद लेने में पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है, उद्योग परिश्रम नहीं करना पड़ता है। परिश्रम दिन में होता है तो वो बात एक अलग है, परंतु नींद के लिए कोई तैयारी करे, उसके लिए कोई उद्योग करे, कोई पुरुषार्थ करे ऐसी बात नहीं है। सामान्य सुते हो जाए तो नींद आ जाती है। जैसे नींद स्वाभाविक है ऐसे स्वाभाविक कुछ नहीं करना एक तत्व है। नहीं करने का आग्रह रखना है ना, वो तो उद्योग है, वो परिश्रम है, करना परिश्रम है, ऐसे न करना भी एक परिश्रम है, उसे तत्व नहीं मिलता है। तत्व न करना करना दोनों के से विलक्षण है। नहीं उतरते कृत्य न अर्थ न अकृत्य न, उसका प्रयोजन न करने से प्रयोजन है, न करने से प्रयोजन है, नहीं किसी प्राणी के साथ कोई संबंध है तो वो एक चीज है प्राप्त करना है। तो वैसे वो चीज समझ में आ गई होगा, नहीं तो खूब खूब समझ लें चुप है, चुप स्वाभाविक चुपी, चुप का आग्रह नहीं चाहिए, नहीं करने का आग्रह नहीं, स्वतः स्वाभाविक। जैसे श्वास चलता है तो आप साहब चलता है श्वास, जैसे आप खोलते हैं मिसते हैं आप साहब होता है, जैसे स्वाभाविक होता है स्वतः ऐसे स्वतः जो कुछ मैंने करना है वो स्वतः वो होना चाहिए, उद्योग पूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक क्रिया पूर्वक वो नहीं, स्वतः साथ। ऐसा होने पर मन में उथल पुथल होगी, मन में कई बातें आवेगी, तरह तरह की बातें आवेगी। तो वो क्या है कि तंत्र जो पहले किया है किए हुए का संस्कार है, उन संस्कारों अनुसार वो चीजें पैदा होगी। तो उस वो जो हलचल पैदा हो, तरह तरह की स्मृति हो, याद आवे, उसकी भी परवाह नहीं करे, उपेक्षा उदासीन उदासीन रहे अपना, कोई आग्रह नहीं होगा, आग्रह न रख करके और अपना नहीं है वो, तो उसको हलचल को अपने में नहीं माने, अपने खुद में नहीं है वो, अपने में क्रिया नहीं है, करना न करना दोनों अपने में नहीं है, मन बुद्धि में है, और मन बुद्धि में मन में वो संकल्प होते हैं तो होते रहे, उसका आग्रह न रहे, न करने का आग्रह न करने का आग्रह, आग्रह नहीं, और वो जो हो वो अपने में न माने, और ये मिट जाए ये भी आग्रह न रखे, और ये बना रहे इसमें भी आग्रह नहीं, उसमें राजी और नाराजी दोनों न हुए, राजी और नाराजी ये बंधन है, खास खास बांधन चीज है, इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेषो व्यवस्थित हो तयोर न बस बागे तो ये परिबंधित हो। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष है, तो संकल्प मन में कोई बात याद आवे तो उसमें राग और द्वेष होगा, अच्छा मन मानोगे अथवा बुरा मानोगे, तो अच्छा और बुरा मानना यही बंधन है, अच्छा मानना भी बंधन है बुरा मानना भी बंधन है, असल क्या है वो बस है नहीं कुछ भी, अच्छा क्या है इसमें, क्या बुरा है, न अच्छा है न बुरा है, प्रवाह है चल रहा है, ये दोनों शत्रु है इसे तो इससे परिपंथी हो, अच्छा बुरा भी न समझे तटस्थ रहे। मन को लगाने में बहुत युक्तियां हैं और मैंने बहुत सी बातें पढ़ी भी है इस विषय में, मैंने लिखी है, पुस्तकों पढ़ी है, लेख अलग अलग पढ़े हैं, कौन क्या कहता है, किसने संबंध लगाना चाहिए किसने, तो इन बातों को बस करके जो मैं सीखी है मेरे को अच्छी लगी है वो बात आपको कहता हूँ। केवल अभ्यास करने के बाद में जो कुछ बात हाथ लगी वो कहता हूँ कि आप आग्रह मत रखो, मन लगाना है ये भी नहीं, नहीं लगाना है ये भी नहीं, मन को स्थिर करना है ये आग्रह नहीं, और मन को चंचल करना है चंचल करना ये भी आग्रह नहीं, शांति एकदम। तो जो संकल्प हो उसमें न राग करे न द्वेष करे, शांत, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कुछ करना नहीं है, ये अभी हमें अभी कुछ नहीं करना है, ये मैंने बात कही थी तो उसका उपयोग खराब हुआ, मेरे को तो कोई कहता है तो पता लगा मेरे लक्ष्य नहीं जाता इतना, मैं समझता ही नहीं कि इतना दुरुपयोग हो जाएगा, मेरे से आकर किसने कहा, किसने कहा वो भी याद नहीं है कि हमें कुछ करना ही नहीं है। भाई मैंने ये करना नहीं, ये नहीं कहा, मैंने कहा है कि जैसे नित्य नेम के लिए बैठे हैं, अब भजन स्मरण करते हैं, परमात्मा मन लगाते हैं, तो इस समय में कोई काम आवे तो भी अभी नहीं, अभी नहीं। अगर काम कर रहे हैं वकील से मिलना है, वैद्य से मिलना है, डॉक्टर के पास जाना है, ये बात आवे ना, तो अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो आध घंटा घंटा जितने देर है तो अभी नहीं, ये पीछे करेंगे। ये मैंने कहा था, अब करना ही नहीं है, और सब कुछ करना है, परंतु अभी वर्तमान में अभी नहीं, ये सोचे अभी नहीं, अभी काम नहीं ना, अभी नित्य करेंगे, भजन पाठ सब करेंगे, अभी अभी नहीं, ऐसो नहीं तो वो बात आती रहेगी, उससे मिलना है, उससे मिलना है, उससे मिलना है, कि अभी नहीं, आध घंटा घंटा जो बैठे है अभी नहीं, अभी तो केवल परमात्मा में लगाना, अभी बस इतने ऐसे हो जाए, शांत हो जाए। अब कुछ आवे न आवे मन में पर वही मत करो, उसकी उदासीन उदासीन गुणे जीवन विचार उदासीन बतासीन उदासीन तभी बैठा रहे। तो ये बात कुछ हाथ लगी है कि नहीं, किसी आई हो तो बताओ, बाधा आई तो पूछो, पूछो पूछो बात। थोड़ा दिन रहा है भी सत्संग करने का, अब हम तो चल रहेंगे, आप लोग फिर कब दर्शन होंगे भगवान जाने, पता है नहीं, कुछ भरोसा नहीं। तो ये बात एक ले रहे है, एक चीज हासिल कर रहे हैं, तो बढ़िया चीज है। जैसे धन कमा लेता है तो मनुष्य हाथ लग जाता है, इतना धन हाथ लग गया, इस तरह से सत्संग के द्वारा ये एक चीज ले लेना बहुत बड़े लाभ की बात है। मन लगाना इतनी दामी नहीं है, एक चीज में मन लगा देना बड़ा कठिन मन लगता है, और लाभ उतना नहीं है जितना इसमें लाभ है। मन लगाने से ऊंची बात है ये, शंका तो बोलो आप, ऐसी कुछ और बात नहीं सुनो कि मैंने तो और बिल्कुल मत छोड़ो, और बिल्कुल मत छोड़ो, ये एक ही बात ठीक निर्णय हो जाए इस पर विचार रखो, और कुछ मत छोड़ो।
कहते हैं कुछ नहीं चिंतन करने में ईश्वर चिंतन तो जारी रहेगा,
ईश्वर चिंतन करो, मैं नहीं कहता हूँ ईश्वर चिंतन करो, मैं ईश्वर चिंतन नहीं कहता हूँ, आप ईश्वर चिंतन करो, करो जब करो कीर्तन करो मजे भी करो, मैं तो कह रहा हूँ ईश्वर की चिंतन नहीं करना है, कुछ भी चिंतन नहीं करना, न ईश्वर करना है, न संसार का करना है, न कुटुंब का करना है, न रुपयों का करना है, किसी का कुछ भी चिंतन करना ही नहीं है। मैं देखो कह चुका हूँ कि मैंने इस विषय में कुछ किया है, अभ्यास किया है, पुस्तकें पढ़ी है, उनके अनुसार चेष्टा की है, वो करने से मेरे को जो सार चीज मिली है वो मैं कहता हूँ। आप इस चिंतन करो, मैं विरोधी नहीं हूँ, नाम जप करो, कीर्तन करो, कुछ भी करो, मैं अभी मैं कह रहा हूँ उसमें तो कुछ भी चिंतन न करें, कुछ भी की चिंतन न करें, न ईश्वर का करें, न संसार का करें, न जड़ का करें, न चेतन का करें, न आत्मा का करें, न अनात्मा का करें, न प्रकृति का करें, न ब्रह्म का करें, कुछ भी चिंतन न करें। बहुत ऊंची चीज है, बहुत श्रेष्ठ चीज है, बहुत ही उत्तम है, कुछ चिंतन न करे। अब चिंतन होता है, उस होने में तीन बात मैंने कही है, एक तो अपने में होता है, मेरे होता है ये न माने, अपने में नहीं होता है, ये मन बुद्धि में होता है, ये अपने में है चिंतन, ये न मान एक दो। एक वो चिंतन है जिसमें राजी न हुए, एक नाराज न हुए, मनो अच्छा हुआ ये मंदा हुआ ये भी ना करें। अपना है ही नहीं क्या सर, क्या मतलब अपना है ही नहीं, अपने को संबंध ही नहीं है। इतनी बात मेरा विश्वास बेशक कर रहे, मैं धोखा नहीं देता हूँ, साफ कहता हूँ, बहुत बड़े लाभ की बात है, ये मामूली लाभ की बात नहीं है, बहुत बड़े लाभ की बात है। तो एक बात कहता हूँ कि संसार है ये हरदम बदलता है, ये बात आपके हमारे सबके अनुभव की बात है, इसमें कोई शंका हो तो बोल दो, इसमें शंका नहीं है ना, हरदम बदलता है संसार, सच्ची बात है, शरीर है संसार है सब बदलता है, केवल बदलने ही बदलने के सिवाय कुछ नहीं है। यहाँ निरंतर बदलने में भी हम राग कर लेते हैं, अच्छा और मंदा कर लेते हैं तो हम बंद जाते हैं, व्रत में है नहीं उसके साथ ही संबंध जोड़ने से हम बंद जाते हैं, मन वो संबंध सिद्ध हो जाता है, पाप और पुण्य बढ़ जाते हैं, अनेक जन्म हो जाते हैं, नहीं होते हुए चलते हुए परिवर्तन में भी मन लगा देते हैं, जोड़ देते हैं तो हमारे जन्म मरण हो जाता है। अब इसके साथ न होते हुए साथ में संबंध जोड़ ले तो हमारे जन्म मरण होता है। एक तत्व परिपूर्ण है सब जगह मौजूद, सब जितने दार्शनिक है सब मानते हैं कि एक तत्व है, मैं को वो तत्व ऐसे मानकर आप चुप हो जावे, उसमें स्थित होने से स्थिति नहीं होगी, और न स्थिति है न गति है, कुछ भी न कर चुप हो जाए तो उसमें स्थिति होगी आपकी। नाशवान में भी जोड़ने से जन्म मन होते हैं, कई कर्म बढ़ जाए, अविनाशी तत्व स्वतः सिद्ध है, उसके साथ आपका संबंध होगा तो कितनी ऊंची होगी जगह, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, जिसका कोई पार नहीं है, ऐसी असीम तत्व है वो, ऐसी असीम तत्व की बात हो। वो तत्व आप पकड़ में आ जाए आपके, ये मैं चाहता हूँ। नहीं होता हुआ भी संसार में मन लगने से बंधन हो गया, जो नित्य निरंतर सदा है, जो का त्यों मौजूद है, उसमें आपकी खुद की स्थिति हो जाए तो कितना लाभ होगा। वो स्थिति करने से स्थिति नहीं होगी, ना चिंतन होगी, ना स्थिति करने से होगी, ना रुकने से होगी, नहीं होगी। योग वृत्ति निरोध, योग दर्शन छह दर्शनों में एक योग दर्शन है, पांच दर्शनों में छठा दर्शन है, उसमें चित्त वृत्ति के निरोध की बात बताई, चित्त की वृत्ति निरोधी, निरोध हो जाने से तदा दृष्टु स्वरूप स्थानम यता है, अथा तो अथा तो योगानुशासनम, योग चित्तवृत्ति निरोध तथा दृष्टु स्वरूप स्थान है, दर्शन का आरंभ का ही तो दृष्टा में स्वरूप में स्थिति होती है, कब के चित्त की वृत्तियों का निरोध होने पर फल में गीता ने वो बात बताई है, जो निरोध होने पर जो स्थिति होती है वो स्थिति सीधी बताई है गीता ने। गीता का योग पातंजलि योग दर्शन से बहुत विलक्षण है, आप शंका तो कोई पूछने का विश्लेषण कर बता दूंगा, बहुत विलक्षण योग है, उस योग की बात आपको मैंने कही है।
निद्रा आ जाती है,
हाँ निद्रा, वो कल बात कही थी मैंने, निद्रा आ जाए तो उस समय पे इस अभ्यास को न करें, उस समय में नाम जप करो, कीर्तन करो और खड़े होकर थोड़ा टहल लो। अगर इसी साधन को करना हो तो थोड़ा खड़ा हो करके नाम जप करते हुए घूम लो, बहुत याद चक्कर लगा फिर बैठ जाओ तो समझ नहीं आएगी। ऐसा टहलने से चित्त की वृत्तियां बहुत शांत होती है।
वो परम तत्व जिसकी आप बात कह रहे हैं अपना आपा एक ही बात है, परम तत्व अपना आपा एक ही है, अपने आपके का अपनी बुद्धि और मन से भिन्न अनुभव जब तक नहीं हो जाएगा तब तक ये बात बनेगी कैसे?
अच्छा वो अलग कैसे होगा, क्या उपाय है?
उपाय ये है कि पहले तो योग के मार्ग से साक्षात्कार घटे।
तो आप पहले योग कीजिए, मेरी बात पहले मत कीजिए, पहले योग का अभ्यास करो।
तो मेरा मतलब ये हुआ कि जो आप अपनी बात कह रहे हैं गीता वाली, उसका सीधा मार्ग बिना योग के हो जाएगा?
बिल्कुल एकदम बिल्कुल ठोस बात है, पक्की एकदम। आपके करना होगा आप वो करके कीजिए, आप पहले मत कीजिए। मैं धोखा नहीं देता हूँ आपको, विश्वासघात नहीं करता हूँ। अब वह किए मैंने पैसे नहीं हो गए वो मैं सिखाऊ नहीं, पहले वाली बात सिखा दू, रीटा ले जाओ दोनों से, वो तो करते नहीं, वो होता नहीं, जयराम जी जी ये धोखा नहीं दे रहा हूँ मैं इन बातों को जानता हूँ। अभिमान की बात है आप कहिए, मैंने इन बातों को पढ़ा है, सुना है, समझा है और जान कर मेरी दृष्टि में जान कर उसे पूछा है, प्रश्नोत्तर किए है, इसमें मैंने किया इस बात के ऐसा करने से हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा नहीं है, सीधा ही हो जाता है। मेरी एक धुन है, आप कृपा करके सुने, मैं अभिमान की नहीं कहता हूँ पर अभिमान की बात है, मैं अभिमान के लिए नहीं कहता हूँ, अभिमान पूर्वक नहीं कहता हूँ, आप लोगों से क्षमा मांग करके नम्रता से कहता हूँ कि ये बातें जितनी होने से होता है ठीक बात है, परंतु मेरी एक धुन है क्या कि जल्दी से जल्दी और हरि का कल्याण कैसे हो, ये मेरी धुन है। स्वतः आप लोगों ने संत महात्माओं के कहने से उनके उपदेश से मेरी एक गति हुई है। मैंने ऋषिकेश में स्वर्गाश्रम में व्याख्यान में के 4-5 वर्ष हो गया हुआ, कितना वर्ष हुआ भैया में?
एक वर्ष हो गया आपको ये कही,
मैंने ये बात कही थी कि ये शरीर अगर मेरा रहा 4-5 वर्ष रहा, 5-7 वर्ष रह गया तो मैं परमात्मा तत्व की प्राप्ति बहुत सुगम बता दूंगा। मैंने सभा में कह दी बात कि तत्व की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाए तो ये 5-7 वर्ष रह गया तो मैं बहुत सुगम बता दूंगा। अब भी मेरी वही धुन है, ये कैसे हरेक को तत्व की प्राप्ति कैसे हो, जल्दी से जल्दी सुगम से सुगम कैसे प्राप्ति हो, ऐसी एक मेरी धुन गति हो गई है। पुस्तकों में देखता हूँ, संतों से पूछता हूँ, प्रश्नोत्तर करता हूँ, जहाँ मेरे अभ्य है वहाँ विचार करता हूँ, उसका स्वयं भी सोचता हूँ। इस बात से मैंने कह दिया कि 5-7 वर्ष सही रह गया तो मैं बहुत सुगमता से बता दूंगा, तो वो मेरी धुन चल रही है अभी। तो मैं ये नहीं बताऊं, आपने कहा उनसे पहले कैसे हो जाएगा तो नहीं होगा तो आप कीजिए, मैं मना नहीं करता हूँ, मैं किसी के मत का खंडन नहीं करता हूँ। मेरी दृष्टि से वो बात बताता हूँ जो सीधे ही ठेठ पहुंच जाए, आप जैसे सीढ़ियों से तो पहुंचता ही है परंतु विहंगम मार्ग है शास्त्र में, विहंगम मार्ग आकाश का मार्ग, तो आकाश मार्ग में जो पक्षी का मार्ग है वो बहुत जल्दी हो जाता है। वहाँ कबीर साहब वाणी में एक बात आती है कि रस्ते रस्ते दूर है, दूर बहुत है, उजड़ पैरा पैड़ी, कहत कबीर सुनो भाई साधो उपरड़े नैड़ी। मारवाड़ी शब्द ऊपर आ रहे मानो अच्छा भी तैयारी अब इस घर में जब की लग रहे ऊपर लड़ी पड़े एकदम बिल्कुल एक दीवार है भी इसमें ऊपर दिया लिया उसे सच हो गया। अब यहाँ से जावे कितना इस मकान से निकलेंगे फिर कितनी गली में होकर जाएंगे फिर वहाँ पहुँचेंगे ऐसे रास्ते दूर बहुत पड़ेगा यार ऐसे बिना रास्ते जा सकते नहीं उधर पेड़ा पेड़ी ऊंचा नीचे चूट है नीचे ऊंचा है रास्ते रास्ते दूर बहुत है उजर पेड़ा पेड़ी कह कबीर सुनो भाई से तो ऊपर रे नेड़ी बहुत नजीक पड़ता है जो नारायण 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 नारायण
राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 18 अक्टूबर 1992 प्रातः लगभग 5 बजे वाराणसी में हुआ। राम।